नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद अध्याय पांच, देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना, श्लोक क्रमांक 48। नवम कर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैव सय्यात्मा दयितो हितः। शब्दार्थ न, नहीं, अवमह अत्यल्प नगण्य, कर्म कर्म, कल्प ढंग से संपन्न किया गया, अपि भी विफलाया व्यर्थ जाते हैं, ईश्वर अर्पित भगवान को समर्पित होने के कारण, कल्पते ऐसा मान लिया जाता है, पुरुषस्य सारे पुरुषों का, एव निसंदेह सह भगवान, ही निश्चय ही आत्मा परमात्मा परमपिता, दयितः अत्यंत प्रिय हित लाभप्रद। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाए, कभी व्यर्थ नहीं होते। अतएव स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म या भक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि यदि यह अत्यल्प लगभग नगण्य मात्रा में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनमें भगवान की थोड़ी सी सेवा करने से भी जीव महानतम संकट से बचा है। उदाहरणतः भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था, वास्तव में वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी नारायण ने इस उच्चारण जप को गंभीरता से लिया और इस तरह अजामिल को अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण का स्मरण करने का फल मिला। यदि कोई किसी भी तरह नारायण, कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय करता है तो वह तुरंत ही भगवत धाम को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जब तक हम इस जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु जो ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं त्यों ही हम पूर्ण तथा पूरी तरह तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। यदि कोई भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है तो यह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम के ही प्राप्त किया जा सकता है। अतएव शास्त्र की संस्तुति है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी न चाहे या भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके भगवान कृष्ण की पूजा करता है। यदि भौतिक इच्छाएं रहे भी तो मनुष्य निस्संदेह भगवान की सेवा करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Especially seeking the blessings of His Holiness Bhakti Madhuri Govind Swami Maharaj to speak something on this Shrimad Bhagavatam. तो यहाँ पर देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं और भक्ति की जो महिमा है इसके बारे में बता रहे हैं। जो भगवान भगवद गीता में अनेक श्लोकों में इसके बारे में बता चुके हैं, इसमें से एक श्लोक यहां पर श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो अगर कोई व्यक्ति अल्प भक्ति भी क्यों ना करें लेकिन फिर भी भगवान उस भक्ति की रक्षा करते हैं, उस भक्ति को कभी भूलते नहीं है भगवान। बद्ध अवस्था में जब दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कुछ कार्य करता है, बद्धता के कारण हम तुरंत भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। लेकिन अगर हम कुछ दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करता है तो फिर हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारे हर एक कार्य को याद रखे। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, भगवान कभी भूलते नहीं है और भक्ति के हर एक कार्य को याद रखते हैं और उस भक्ति की सुरक्षा करते हैं। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद अजामिल के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने अजामिल की भक्ति की सुरक्षा की, क्योंकि अजामिल ने अपने युवा अवस्था में उन्होंने भक्ति की, भगवान नारायण की भक्ति की। एक ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की, हालांकि बाद में वो सब कुछ भूलकर सभी प्रकार के भौतिक कार्य में लग गए, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी अपने छोटे से लड़के को नारायण नाम रखने के लिए। तो भगवान किस प्रकार एक भक्त की भक्ति की सुरक्षा करते हैं? भगवान अलग अलग प्रकार की तरीकाएं अपनाते हैं। तो हम शास्त्र में हम देखते हैं अनेक उदाहरण जहां पर भगवान नाना प्रकार के तरीका अपनाते हैं भगवान भक्त की भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसलिए गजेंद्र अपने प्रार्थनाओं में भगवान को संबोधित करते हुए यह शब्द का इस्तेमाल करता है, अललाय, भूरी करुणाय अललाय। तो भूरी करुणाय का मतलब है अत्यंत ही कृपालु दयालु है, और अललाय का मतलब है, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं उसको, द लॉर्ड इज नेवर लेजी इन डिलीवरिंग द कंडीशन। सो तो हम लेजी हो सकते हैं लेकिन भगवान लेजी नहीं होते हैं। भगवान हमेशा प्लान बनाते हैं कि यह जो बद्ध जीवात्मा जो है इसको किस तरह उद्धार किया जाए, और जब कोई भक्ति शुरू करता है तो फिर तो भगवान और भी प्लान्स बनाते हैं कि किस प्रकार यह भक्त जो है यह हमेशा अपना भक्ति को जारी रखें। तो अजामिल के केस में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार, क्योंकि अजामिल पूरी तरह से भगवान को भूल गए थे, लेकिन भगवान ने जो अजामिल की जो भक्ति जो उन्होंने की वो भूले नहीं, और उस भक्ति को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भगवान ने उस घटना की आयोजन की कि अंत के समय उनको खतरनाक यमदूतों का दर्शन हुआ। भगवान का ही प्लान है। तो फिर उन यमदूतों का दर्शन करके, फिर यमदूत और विष्णुदूतों के बीच में वार्तालाप सुनकर, फिर से अजामिल भक्ति की ओर मुड़ गए, और फिर हरिद्वार जाके हम जानते किस प्रकार तीव्रता से भक्ति करने लगे। तो उसी प्रकार इसी स्कंद में हम आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा गजेंद्र के बारे में। तो गजेंद्र भी हालांकि हाथी था लेकिन पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था, और राजा इंद्रद्युम्न के रूप में उन्होंने भक्ति की, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारणवश वो उसको उनको एक हाथी का जन्म मिला, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, ये भगवान का ही आयोजन है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में जो भी भक्ति की, जो भी मंत्र या श्लोकों का उच्चारण किया था वो याद रहा। तो मैं यह श्लोक और तात्पर्य पढ़ना चाहता हूं, तीसरे अध्याय के, इस स्कंद के तीसरे अध्याय पहला श्लोक, जहां पर इस पॉइंट को श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो इस श्लोक में श्री बादनायन उवाच, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्म्य अनुशिक्षितम्। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गजेंद्र अपने मन को बुद्धि के द्वारा अपने हृदय पर केंद्रित करके उन्होंने जजाप परम जाप्यम, उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में इंद्रदमन राजा के, जब इंद्रदमन राजा थे उस समय जो मंत्र उन्होंने याद किया था वही मंत्रों को फिर से उनको स्मरण आया। लेकिन यह स्मरण जो है वो भगवान की कृपा से उनको स्मरण आया। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के कुछ छठे अध्याय से श्लोक, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते चतो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते हि अवशो अपि स। तो इन श्लोकों में भगवान बताते हैं किस प्रकार एक व्यक्ति भक्ति करने के बाद अगर पतन भी हो जाता है लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी परिस्थिति में डाला जाता है कि उन्हें भगवान को स्मरण करने का एक अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो। और इसलिए यहां पर यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना, तो यहां पर इसलिए भगवान ने गजेंद्र को एक मौका दिया फिर से उनको स्मरण करने के लिए। और किस प्रकार उनको जो मंत्र या श्लोक उन्होंने अपने पिछले जन्म में याद किए वही श्लोकों का स्मरण फिर से आ गया उनको। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ श्लोक या मंत्र याद रखना जरूरी है, कब काम में आएगा पता नहीं। तो इसलिए भक्ति शास्त्री में श्लोक याद रखना जरूरी है, केवल भक्ति शास्त्री एग्जाम के लिए नहीं, पता नहीं अगले जन्म में काम आ सकता। और इस तात्पर्य में फिर से श्री प्रभुपाद अजामिल का ही उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण करके मुक्त हो गए, इस खतरनाक भयानक स्थिति से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार हम गजेंद्र की कहानी में भी हम देख सकते हैं कि यह जो स्मरण जो है पिछले जन्म में जो भी श्लोक मंत्र इनका स्मरण जो है भगवान ने ही दिलाया उनको, जय कृष्ण। तो क्योंकि भगवान ही स्मरण देते हैं या भगवान ही बुला देते हैं, अंततः भगवान ही परमात्मा के रूप में सब कुछ भगवान ही करते हैं। लेकिन जब भगवान चाहते हैं कि कोई भक्त अपने भक्ति को जारी रखे तो भगवान ऐसे परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिसके वजह से भक्त अपना भक्ति को जारी रख सकता है। तो यहां पर क्योंकि गजेंद्र ने याद किया, फिर उन मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान को याद किया, तो फिर भगवान आ गए उनको बचाने के लिए। तो उसी प्रकार भक्तों के जीवन में हम देख सकते हैं कि कभी कभी जब भक्त लोग ढीले पड़ जाते हैं या हो सकता है कभी कभी भक्त लोग भक्ति को छोड़कर चले जाते हैं यह सोचते हुए कि यह भक्ति बहुत मुश्किल है, या इंद्र तृप्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं माया के प्रभाव से, तो अलग अलग कारणों से कभी कभी भक्तगण या तो अपने भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं या भक्ति को छोड़ ही देते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में भी भगवान जो भक्ति उस भक्त ने किया भगवान उस भक्ति को भूलते नहीं है, और फिर भगवान अलग अलग प्लान्स बनाते हैं किस प्रकार उस भक्त को फिर से गंभीर कैसे बनाए जाए या किस प्रकार उस भक्त को फिर से भक्ति पथ पर लाए जाए। और कभी कभी हम देखते हैं जैसे कि यहां पर ये दो उदाहरण में हम देख सकते हैं, अजामिल का उदाहरण और गजेंद्र का उदाहरण, इन दो उदाहरणों में हम देख सकते किस प्रकार भगवान भक्त को एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं। अजामिल की कहानी में यमदूतों का दर्शन हुआ भयानक खतरनाक, गजेंद्र की कहानी में उनको मगरमच्छ के मुंह में उनका उनका जान तो जाने वाला ही था। तो उसी प्रकार भगवान अलग अलग परिस्थिति आयोजित करते हैं, लेकिन जब भगवान इस प्रकार की परिस्थितियों को अरेंज करते हैं और लगता है कि भक्त एक दुखदायक स्थिति से गुजर रहा है, एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति की तरह नहीं है, यह भगवान की एक विशेष आयोजना है, अरेंजमेंट है, और यह भगवान की विशेष कृपा है उस भक्त के ऊपर। इसके संदर्भ में पहले स्कंद में जब नारद मुनि व्यासदेव को भक्ति की महिमा के बारे में बता रहे हैं, वहां पर एक महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं। ये पहले स्कंद के पांचवें अध्याय के 19वां श्लोक है, जहां पर नारद मुनि व्यासदेव से कह रहे हैं, न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्या अन्यवत अंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनर विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः। नारद मुनि कह रहे हैं कि मुकुंद सेवी, मुकुंद सेवी का मतलब है भक्त जो भगवान मुकुंद की सेवा कर रहा है। जब कतंचना, कतंचना का मतलब है किसी वजह से, किसी वजह से, किसी कारण से जब उसका पतन हो जाता है, या तो भक्ति छोड़ देता है, भक्ति में ढीला पड़ जाता है, तो फिर ऐसा भक्त न संस्मृतिम, संस्मृतिम वो एक साधारण व्यक्ति की तरह भौतिक जीवन में नहीं पड़ता है। हालांकि लगता है कि वो एक भौतिक जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी वो साधारण भौतिकवादी व्यक्ति की तरह भौतिक जीवन नहीं है। क्यों? स्मरण मुकुंद अंग्री उपगुहनम, क्योंकि मुकुंद अंग्री भगवान के चरण कमल वो स्मरण रहता है उनको, वो कभी भूल नहीं सकता है, और उन चरण कमलों को उपगुहनम का मतलब है वो बारंबार आलिंगन करता है, क्योंकि विहातम इच्छे न रसग्रहो, उस रस को जो भगवान के चरण कमलों में जो वो जो रस है, जो भक्ति रस है, उस रस को वो कभी भूलता नहीं। जिस प्रकार इस मंदिर में अलग अलग रस बांटे जाते हैं, और हो सकता है कि मंदिर छोड़ने के बाद भी वो रस जो है वो याद, वो स्मरण आता रहता है। जिस प्रकार श्री प्रभुपाद शुरुआत के दिनों में हर एक मंदिर में स्वयं बनाए हुए इस्कॉन बुलेट्स का बॉटल रखते थे, तो कभी भक्त लोग अलग अलग कारण के वजह से कभी मंदिर छोड़कर चले जाते थे, लेकिन बार बार उस स्वाद को, वो इस्कॉन बुलेट्स गुलाब जामुन का जो स्वाद है, बार बार याद आता था उनको, और वो स्वाद उनको कहीं नहीं मिलता, तो बार बार वो स्मरण करते हुए कुछ लोग वापस आ गए मंदिर में। तो इसलिए अगर फर्स्ट क्लास प्रसाद है तो उस प्रसाद को, ये कम से कम उस प्रसाद के लिए भक्त लोग छोड़ेंगे नहीं, उस स्वाद को बार बार याद रखते हुए। वो वास्तव में भगवान के चरण कमलों का ही स्वाद है, रस है, क्योंकि उस प्रसाद में भगवान की कृपा है। रसग्रहो जनः। तो इस प्रकार जब भगवान, तो भगवान उन भक्तों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों की आयोजन करते हैं कि विवश होकर उस भक्त को भगवान की भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में स्मरण आ जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताते हैं भक्तों के लिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द डिवोटी इज रिफॉर्म्ड बाय चैस्टाइजमेंट डायरेक्टेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। ये जो भी परिस्थिति जो है, ये स्वयं भगवान आयोजित कर रहे हैं, ये माया देवी के द्वारा नहीं है, स्वयं भगवान आयोजित करते हैं अपने भक्तों के जीवन में। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त जो है वो वापस उनके पास आए या हमेशा उनको स्मरण करें, क्योंकि भगवान अत्यंत दयालु है, कृपालु है, पूरी करुणाय है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तगण हमेशा उनको स्मरण करते हुए हमेशा भक्ति में लगे रहें, क्योंकि उससे भक्तों की कल्याण या उस जीव की कल्याण के लिए है। तो ऐसे विगत परिस्थितियों में जब भगवान भक्तों को डालते हैं तो फिर अगर भक्तगण ढीले हैं तो फिर वो तीव्र बन जाते हैं। तो एक बार हमारे कुछ ब्रह्मचारी भक्त लोग पुणे के नजदीक निगड़ी नाम का एक जगह है, तो वहां पर भी हमारा मंदिर है। तो वहां के कुछ ब्रह्मचारी भक्त लोग मुंबई जा रहे थे, तो बीच में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, हिली रीजन है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार हिली रीजन में बहुत सारे स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स चढ़ाव। तो बस एक स्लोप पर जा रहे थे नीचे, तो ड्राइवर ने प्रयास किया बस की स्पीड को कम करने के लिए, ब्रेक दबा रहा था, लेकिन पता चल गया ब्रेक आउट ऑफ फंक्शन है। ड्राइवर तो कांपने लगा, अभी स्लोप है और दोनों साइड तो केवल हजारों मीटर नीचे वैली। तो अभी ब्रह्मचारी भक्त पीछे मस्त हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, ड्राइवर उनकी ओर देखने लगा। तो भक्तों ने पूछा, क्या हो गया भाई साहब? उन्होंने कहा, ब्रेक फेल। तो सभी भक्तगण घबरा गए, क्योंकि अभी पता हो गया कि एक ही सहारा है। बहुत जल्दी ही नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है। ऐसे परिस्थितियों में फिर भगवान नरसिंहदेव को अच्छी तरह से स्मरण हम कर सकते हैं। और ये भक्त लोग बहुत तीव्रता से, शायद अपने जीवन में उन्होंने उस तीव्रता से उन्होंने कभी नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना नहीं की होगी। और उस समय तक कुछ आनंद में मजाक के साथ हरिनाम ले रहे थे, लेकिन अभी कुछ अलग मूड से हरिनाम लेने लगे, तीव्रता से भगवान को पुकारते हुए, हे भगवान केवल आप ही हो बचाने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं है। उस तीव्रता के साथ वो हरि नाम लेने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का एक विशेष आयोजना है भक्तों को अपने भक्ति में तीव्र बनाने के लिए। तो ये समझना जरूरी है कि भगवान स्वयं भक्तों के जीवन में ऐसे परिस्थितियों को अरेंज करते हैं। कितने सारे उदाहरण है, ये केवल एक उदाहरण है। लेकिन मुख्य पॉइंट यहां पर यह है, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य समझाते हैं कि जब भक्तगण इस प्रकार की परिस्थितियों में जाते हैं, से गुजरते हैं, और जो भौतिकवादी लोग ऐसे ही परिस्थितियों से गुजरते हैं, एक बहुत बड़ा अंतर है। और उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक ऑर्फन, एक अनाथ बच्चा है और एक राजा का बेटा है, हो सकता है दोनों ही पीड़ित अवस्था से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि एक अनाथ बच्चा जो है उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो वो केवल उस पीड़ित अवस्था से गुजरता जाता है। लेकिन एक राजा का बेटा जो है, हो सकता है वो कुछ पीड़ित अवस्था से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो पिता है वो हमेशा साथ में है, देखने के लिए, संभालने के लिए, सांत्वना देने के लिए। ये इस उदाहरण का ये एक दृष्टिकोण है। कुछ भक्तगण इसी उदाहरण का और एक दृष्टिकोण भी बताते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जब समझो एक अनाथ बच्चा या ठीक है, एक अनाथ बच्चा और एक राजा का बेटा, या एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति, दोनों को जेल में डाला जाता है। जब दोनों को जेल में डाला जाता है तो कौन व्यक्ति ज्यादा पीड़ित होगा? अमीर व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति ने अब तक बहुत ही ऐश्वर्यवान जीवन जिया है, और इसलिए उसको अभी यह अवस्था जो है बहुत ही दुखदायक लगता है। द सफरिंग इज मच मोर। लेकिन हो सकता है जो गरीब व्यक्ति है उसको वैसे भी बाहर कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, कम से कम जेल में कुछ खाने को मिल रहा है। तो हालांकि कुछ स्वतंत्रता नहीं है जेल में, लेकिन फिर भी उसको इतना पीड़ा अनुभव नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो अनाथ व्यक्ति की तरह है, और जो भक्त जो है वो राजा के बेटे के समान है या एक अमीर व्यक्ति के समान है। तो इसलिए जब भक्तगण भौतिकवादी जीवन या भौतिक जीवन से गुजरते हैं और भौतिक जीवन में नाना प्रकार के क्लेश आते हैं उनके जीवन में, तो भगवान को स्मरण करते हुए उनको और ज्यादा पीड़ा की अनुभव होती है। वो सोचते हैं कि मैंने क्या छोड़ दिया है, भक्तों का सन, महाप्रसाद, भगवान का दर्शन, ऐसे जीवन को मैंने छोड़ा है। यह स्मरण करते हुए एक भक्त को बहुत पीड़ा की अनुभूति होती है। तो इसलिए यह सब भगवान का ही आयोजन है। एक भक्त को भक्ति में या तो गंभीर बनाने के लिए या फिर से भक्ति में लाने के लिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि हर परिस्थिति में हमें समझना है कि यह भगवान की कृपा है भक्तों के ऊपर। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक पिता होता है तो कभी कभी अपने बच्चों को आलिंगन देता है और कभी थप्पड़ मारता है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में पिता जो है वो हमेशा बच्चे की भलाई चाहता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, कभी कभी पिता जो है अपने बच्चे को कड़वी नीम जूस या कभी कभी एक बहुत मीठा लड्डू खिलाते हैं, लेकिन दोनों उस बच्चे की भलाई के लिए हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा प्रदान करना चाहता हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को, यस्याहम अनुग्रह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो जो भी भगवान की विशेष कृपा की अभिलाषा करते हैं तो याद रखें इस श्लोक को। भगवान कहते हैं कि जब मैं विशेष कृपा देना चाहता हूं तो मैं सब कुछ छीन लेता हूं। क्यों? जिससे वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से असहाय, टोटली हेल्पलेस। फिर उसको यह समझ में आता है कि अभी मेरे रिश्तेदार मित्रगण सब उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और उस व्यक्ति के लिए कोई नहीं बचता है, सहारा के लिए एकमात्र व्यक्ति बच जाता है और वो है भगवान। और ऐसे परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति जो है निस्सहाय भावना से भगवान के चरण कमलों की आश्रय ग्रहण करता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस प्रकार की जो असहाय भावना जो है, हेल्पलेस फीलिंग जो है, यह भगवान की कृपा है उस भक्त के ऊपर। भगवान भगवद्गीता में यह भी कहते हैं कि जो भक्तगण भक्ति को छोड़ देते हैं कभी कभी उनको एक शुचिनाम श्रीमताम गेहे, एक अमीर परिवार में या ब्राह्मण के परिवार में जन्म देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति उतने भाग्यवान नहीं है जितने कि ऐसे भक्त जिनके जीवन में भगवान ऐसे परिस्थितियों को अरेंज करते हैं जहां पर भक्त पूरी तरह से असहाय हो जाए। ऐसे भक्त बहुत भाग्यवान है क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में भक्त को तीव्रता से भगवान के चरण कमलों की आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। और फिर भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान खुद स्वयं अपना स्मरण दिलाते हैं और स्मरण दिलाते हुए भक्तगण फिर से भक्ति में तीव्र बन सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे इस्कॉन संस्था में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जब भक्तगण कई सालों के बाद भी भक्ति छोड़कर चले जाते हैं तो भगवानों के जीवन में ऐसे परिस्थितियों का को अरेंज करते हैं। कभी हम देखते हैं भक्त लोग कैंसर और अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं जिससे फिर से भक्तगण भक्तों को भगवान को स्मरण करते हुए वापस भक्तों के संग में आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की भक्ति को सुरक्षा करते हैं। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं शास्त्र में। तो यहां पर हमने चर्चा की किस प्रकार भगवान भक्तों की जो भक्ति है उस भक्ति की सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान जब भक्त लोग डिस्करेज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं भक्ति करते समय, तो भी भगवान आते हैं उनको मदद करने के लिए, ताकि वो फिर से उत्साहित हो जाए भक्ति में। या भगवान अपने भक्तों का जो शरीर है या जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको भी पूर्ति करते हैं, जिसके वजह से वो अच्छी तरह से भक्ति कर पाए। या जब भगवान देखते हैं कि भक्त लोग घमंडी हो गए और उसके वजह से वो भक्ति से दूर जा रहे हैं, तो भगवान उस अहंकार को चूर चूर कर देते हैं, जिसके वजह से वो फिर से नम्रता के साथ भक्ति कर पाए। तो इस प्रकार भगवान भक्तों की भक्ति की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए यहां पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। और इसलिए भगवान इस श्लोक को कोट करें, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी, यह बताने के लिए कि अगर कोई इच्छा भी हो, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए अगर हम भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान केवल उस इच्छा की पूर्ति ही नहीं करते हैं, बल्कि साथ साथ शुद्धिकरण भी करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसलिए अगर भौतिक इच्छा भी है तो भगवान के पास जाना ही श्रेष्ठ है, इस प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और इस प्रकार जब भगवान के आयोजन से भक्त तीव्र भक्ति करता है, फिर वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। जब उनको यह साक्षात्कार प्राप्त होता है कि भगवान के चरण कमलों के अलावा और कोई सहारा नहीं है, और पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है, फिर सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं को त्याग कर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हुए। हरे कृष्ण। किसको कोई प्रश्न है? तो इन अलग अलग किस प्रकार भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके लिए अलग अलग उदाहरण हैं और हम काफी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम केवल एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और फिर प्रश्न।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे से आपने जो है चीजों को समझाया। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान जो है हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति की सुरक्षा करते हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की भिन्न भिन्न डिमांड्स होती हैं, और जब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भक्ति में शुरू में आता है तो भगवान कईयों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, कईयों की भौतिक इच्छाओं को बिल्कुल ही पूरा करते हैं, और जो होती है उनके पास भौतिक संपत्ति उसको भी ले लेते हैं, तो इसके पीछे भगवान का जो क्राइटेरिया है वो क्या हो रहता है? मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की भिन्न भिन्न तरह से सुरक्षा करने का।
भगवान परफेक्ट है, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान उस लेवल का ही परीक्षा देते हैं जो भक्तगण पास कर सके, क्योंकि भगवान यह नहीं चाहते हैं कि भक्त लोग फेल हो जाएं। तो इसलिए भगवान साथ साथ वो बुद्धि भी देते हैं वो टेस्ट में पास होने के लिए। तो भगवान जानते हैं कि किस व्यक्ति के लिए क्या चीज उपयुक्त है, उस परिस्थिति में उस भक्त की भक्ति को और बढ़ाने के लिए। तो अगर भगवान सोचते हैं कि इस भक्त को कुछ भौतिक चीज, उनकी इच्छाएं जो है वो पूर्ति करने से वो भक्ति में और उत्साहित हो जाएगा, तो फिर भगवान वैसे करें। या अगर भगवान देखते हैं कि इस भक्त को भौतिक चीज लेने से वो भक्ति में और उत्साहित हो जाएगा, फिर वैसे भगवान करेंगे। तो भगवान परफेक्ट हैं और भगवान जानते हैं। तो हम कुछ डिमांड नहीं कर सकते हैं कि भगवान की कृपा जो है, जिस प्रकार मैं सोचता हूं भगवान उसी प्रकार कृपा देनी चाहिए, भगवान जानते हैं। तो इसलिए यह सब चर्चा करना जरूरी है, जिससे हम हर परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति जिस प्रकार हम सोचते हैं उसी प्रकार हो या परिस्थिति जो है बिल्कुल उल्टा हो, जिसने हमने कल्पना भी नहीं की, लेकिन हर परिस्थिति में जब हम भगवान की कृपा को देख पाएंगे तभी फिर वो टेस्ट में हम पास हो गए। फिर जब एक टेस्ट में हम पास हो जाते हैं फिर भगवान और कृपा देते हैं अगले टेस्ट के लिए।
हरे कृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच। और जी वो पूछा था ब्रह्मचारी की जब बस थी उसका क्या हुआ, कहने वाले
हाँ अच्छा सर ठीक है ठीक है। अधूरा रहे तो भगवान को जब कोई पुकारता है तीव्रदास है तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो फिर वो ड्राइवर किसी ना किसी प्रकार से उस बस को एक वहां पर एक पेड़ था तो उस पेड़ से टुकड़ा कर फिर वो बस रुक गई वहीं पर, लेकिन किसी को कुछ चोट नहीं पहुंचा और सब सुरक्षित वापस आ गए। जय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की समवेद गौड़ भक्त वृंद की जय। नदाय गौड़।